हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अक्षय उन दोनों की बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही दरवाजे की डोरबेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने भाई बहन के सवालों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर भागता हुआ गया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ पर सामने येलो कलर की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए एक दुबली पतली सी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। इतनी देर से अक्षय के चेहरे पर जो टेंशन थी वो औरत को दरवाजे पर देखकर एकदम गायब हो गई। वहीं पीछे बैठे देविका और मानस एकदम चौंक गए। अक्षय उन दोनों की बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही दरवाजे की डोरबेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने भाई बहन के सवालों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर भागता हुआ गया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ पर सामने येलो कलर की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए एक दुबली पतली सी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। इतनी देर से अक्षय के चेहरे पर जो टेंशन थी वो औरत को दरवाजे पर देखकर एकदम गायब हो गई। वहीं पीछे बैठे देविका और मानस एकदम चौंक गए। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर सवालिया नज़रों से देखा और दोनों ने ही अपने कंधे उचका दिए क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता था इन सब के बारे में। तभी देविका उठकर दरवाजे तक आई और अक्षय के पीछे आते हुए उसने पूछा, ये कौन है भाई? अक्षय उसकी बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही वो लड़की घर के अंदर आ गई और बोली, मैं काम के वास्ते आई हूँ, मुझे विमला काकी ने यहाँ पर भेजा है, आप लोगों को काम वाली की ज़रूरत है ना, और मुझे काम की। उसे लड़की के पीछे ही अक्षय और देविका भी आए। तभी देविका कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अक्षय ने कहा, हाँ मैंने ही बोला था विमला काकी से, तुम आज से ही काम शुरू कर सकती हो और यहाँ पर ही रह भी सकती हो। देविका अभी भी हैरानी से अक्षय की तरफ देख रही थी। अक्षय ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, देविका बेटा, मुझे पता है तुझे ज्यादा काम करने की आदत नहीं है और ना ही तुझे सब कुछ आता है, तुझे बहुत परेशानी हो रही है, इसीलिए मैंने ही विमला काकी से बोला था, अब ये तेरी मदद कर देगी घर के सारे कामों में। देविका ने बहुत ही कंफ्यूज होते हुए सवाल किया, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये है कौन और इसने अपना चेहरा क्यों ढक कर रखा हुआ है? मानस ने भी आगे आते हुए पूछा, और ये पैसे कितने लेगी? आपने पैसों के लिए बात कर ली है ना भाई? अपने भाई बहन के इतने सारे सवालों का जवाब देने से पहले अक्षय ने एक ठंडी सांस छोड़ी और कहा, वो उसकी मर्जी है, वो जैसे भी रहे, और पैसों की बात हो चुकी है, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम बस इसे काम समझा देना देविका। इतना बोलकर अक्षय वहाँ से अपने कमरे में चला गया क्योंकि उसे पता था अगर वो और ज्यादा देर रुका तो उसके भाई बहन और सवाल करेंगे। देविका उस लड़की से बात करने लगी और उसे लेकर सीधा किचन में चली गई और सारा काम समझाने लगी। वहीं दूसरी तरफ सार्थक दोबारा से हॉस्पिटल आया। इस वक्त वेदांश वहाँ पर नहीं था लेकिन उसके बॉडीगार्ड वहाँ पर खड़े हुए थे। सार्थक के पीछे ही वेदांश का बॉडीगार्ड भी हॉस्पिटल रूम के अंदर आने लगा क्योंकि वेदांश उसे ऐसा करने को बोलकर गया था। सार्थक अपनी जगह पर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर उसे बॉडीगार्ड की तरफ देखा। सार्थक ने उस बॉडीगार्ड से पूछा, क्या है भाई, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उस बॉडीगार्ड ने एकदम सीरियस टोन में कहा, बॉस के ऑर्डर है जो हमें फॉलो करने होंगे। इस बार सार्थक गुस्से में बोला, तुम्हारे बॉस ने मेरे पीछे आने का ऑर्डर दिया है क्या तुम्हें? चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहकर अपना काम करो और भूल मत मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। सार्थक की ये बात सुनकर वो बॉडीगार्ड अपनी जगह पर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा जहाँ पर हेड बॉडीगार्ड अवंत खड़ा हुआ था। ऐसे ही किसी सिचुएशन के लिए वेदांश उसे जानबूझकर यहाँ पर छोड़कर गया था और अपने साथ दूसरे बॉडीगार्ड को ले गया था। अवंत तुरंत ही वहाँ पर आया और उसने सार्थक से कहा, सर हमें पता है आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं लेकिन हम अपने बॉस के लिए काम करते हैं और सिर्फ उनके ऑर्डर मानते हैं। उन्होंने हमें बोला था कि जब कोई भी अंदर मैडम से मिलने जाए तो हमें भी वहाँ पर होना है, फिर वो चाहे कोई भी हो, अगर डॉक्टर भी अंदर जाते हैं तब भी हम अंदर जाएंगे क्योंकि बॉस को किसी पर भी भरोसा नहीं है। सार्थक ने चिढ़ते हुए सवाल किया, इतना ही है तो तुम्हारा बॉस खुद कहाँ चला गया? अभी तो बहुत जिम्मेदार पति बन रहा था और अब अपनी बीवी को छोड़कर ऐसे ही चला गया? सार्थक ने जानबूझकर थोड़ा घुमा फिराकर ये सवाल किया क्योंकि वो बॉडीगार्ड को उकसाकर ये जानना चाहता था कि वेदांश कहाँ गया था। लेकिन अवंत कितना बेवकूफ नहीं था, वो इन सब चीजों में पहले से ही काफी माहिर था और उसने तुरंत ही इस बात को समझ लिया। उसने दूसरे बॉडीगार्ड को वहाँ से वापस चले जाने को कहा और खुद सार्थक की तरफ देखते हुए बोला, सर आप क्यों बेवजह मुझसे बहस कर रहे हैं, आपको जो भी काम है वो करिए ना, मैं बस वहाँ पर साइड में खड़ा रहूँगा, मैं आपको या किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मुझे अपना काम काफी अच्छे से आता है। अवंत ने सार्थक के सवाल को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इस बात से सार्थक काफी ज्यादा चिढ़ गया, लेकिन फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा और वो अंबिका के हॉस्पिटल रूम के अंदर आ गया। इस वक्त वेदांश की माँ भी वहाँ पर नहीं थी। वेदांश के चले जाने के बाद वो भी घर वापस चली गई थी। सार्थक अंदर आया, उसने देखा कि अंबिका जाग गई थी, लेकिन वो पहले की तरह ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंबिका ने नजर उठाकर उसकी ओर देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे सिर्फ वेदांश के आने की उम्मीद थी, इसलिए सार्थक को देखकर वो काफी ज्यादा निराश हुई। उसे खुद भी नहीं पता कि क्यों वो सिर्फ वेदांश को ही वहाँ पर आते हुए देखना चाहती थी। सार्थक ने उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंबिका के चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं थी। उसने अपने मन में कहा, ये सार्थक फिर से यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने तो इसे सुबह सब कुछ बता दिया था और ये फिर से यहाँ पर आ गया। वेदांश भी यहाँ पर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। वैसे वो क्यों ही होगा यहाँ पर, उसे क्या ही पड़ी है मेरी, इतनी देर ही पता नहीं क्यों रुका हुआ था, शायद इसीलिए कि वो मेरे और सार्थक के बीच की बात सुनना चाहता था, या फिर मैं उसे क्या बयान दूँ, हाँ जरूर ऐसा ही कुछ होगा। क्रमशः, क्या आपको ये कहानी पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो जरूर बताइए आज के एपिसोड में क्या था आपका फेवरेट सीन, और कौन है अब तक आपका फेवरेट कैरेक्टर और फेवरेट कपल, बताइए कमेंट में। रोज के एपिसोड में से ही अपना फेवरेट पार्ट या डायलॉग तो जरूर बताइए, और स्टोरी में क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और आप लोगों को क्या देखना है, ये सब आप लोग कॉमेंट में लिख कर करिए, और स्टोरी को रेटिंग रिव्यू जरूर करिए, साथ में हमें फॉलो भी कर लीजिए। ये स्टोरी हम ऐसे ही खामोशी से तो कंटिन्यू नहीं करने वाले, हमें हमेशा की तरह बात करने वाले लोग चाहिए जो स्टोरी में पूरा इंटरेस्ट लें, तभी इस स्टोरी के जल्दी जल्दी ज्यादा और बड़े पार्ट मिलेंगे आप लोगों को। क्योंकि जब कोई भी कमेंट नहीं करता है, सिर्फ पढ़कर चले जाते हैं, तो फिर मेरा भी अगला भाग लिखने का दिल नहीं होता, पुअर साइलेंट रीडर्स को जिनकी कोई वॉइस नहीं है स्टोरी को लेकर, बहुत हर्ट होता है।